नमस्कार भारत, 21 अक्टूबर सोमवार, मैं हूं मोहम्मद शाहिद। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा के लिए मतदान आज, दो लोकसभा सीटों पर भी होगा उपचुनाव। सेना प्रमुख का दावा, नियंत्रण रेखा पर फायरिंग में 6 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक मारे गए।
इस वक्त तक जो खबर है हमारे पास वो 6 से 10 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और तकरीबन इतने ही आतंकवादी भी मारे जा चुके हैं।
जानेंगे ब्रेक्जिट सौदा हो जाने से ब्रिटेन पर क्या पड़ेगा असर।
अब अगर ब्रिटेन निकल जाता है यूरोपियन यूनियन से तो ये जितनी सारी यहाँ पे चीजें बनती हैं उनको तो कहीं पे और बनवाना पड़ेगा, तो काफी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर इस पे असर पड़ेगा।
होगी उस वक्त की डायरी और खेल और खिलाड़ी भी, लेकिन सबसे पहले सुनेंगे विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार नवीन नेगी से। हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए आज वोट डाले जाएंगे। महाराष्ट्र में जहां 288 विधानसभा सीटें हैं तो वहीं हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं। महाराष्ट्र में मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ भाजपा शिवसेना गठबंधन कांग्रेस और एनसीपी के बीच है, वहीं हरियाणा में सत्ताधारी बीजेपी के सामने कांग्रेस की चुनौती है। लेबनान की गठबंधन सरकार देश में बड़े स्तर पर आर्थिक बदलाव करने के लिए तैयार हो गई है। सरकार ने यह फैसला पिछले काफी वक्त से चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बाद लिया है। लेबनान की सरकार कुछ कंपनियों का निजीकरण करने, नए करों को हटाने और उच्च अधिकारियों की तनख्वाह आधी करने पर विचार कर रही है। हालांकि इसके बाद भी बेरूत और त्रिपोली में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये कदम नाकाफी हैं। हम सड़कों पर ही रहेंगे क्योंकि ये फैसले काफी नहीं हैं। हम पूरी कैबिनेट का इस्तीफा चाहते हैं। हम जल्दी चुनाव करवाना चाहते हैं और जिन लोगों को सड़कों से उठाकर जेल में डाला गया उनके लिए इंसाफ चाहते हैं। जब तक यह सब नहीं हो जाता हम सड़कों से नहीं हटेंगे। ये थे एक प्रदर्शनकारी के शब्द। चिली में मेट्रो किराया बढ़ाए जाने के बाद शुरू हुए विरोध प्रदर्शन दूसरी रात भी जारी रहे। इन विरोध प्रदर्शनों में अभी तक 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। प्रशासन ने चिली के प्रमुख शहरों में कर्फ्यू जारी रखने का फैसला किया है। राजधानी सैंटियागो के कुछ हिस्सों में प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प और लूटपाट की खबरें सामने आई हैं। इस बीच राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा ने कहा है कि दंगा करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
Yo estoy convencido que la democracia no solamente tiene el derecho, tiene la obligación de...
मेरा मानना है कि लोकतंत्र आपको सिर्फ अधिकार ही नहीं देता बल्कि इसके साथ ही लोकतंत्र को बचाए रखने की जिम्मेदारी भी देता है, और जो कोई भी शख्स इसे नुकसान पहुंचाएगा वह कानून के दायरे में जरूर आएगा। ये थे चिली के राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। उत्तर पूर्वी सीरिया में मौजूद कुर्दिश सेना ने कहा है कि उन्होंने तुर्की की सीमा के नज़दीक रस अल आयन शहर छोड़ दिया है। हाल ही में तुर्की के साथ हुए अस्थायी शांति समझौते के तहत यह फैसला लिया गया है। इससे पहले बड़ी संख्या में इस इलाके से कुर्द लड़ाकों और घायल लोगों को निकलते हुए देखा गया था। आम लोग भी तुर्की की सेना के डर से शहर छोड़ते हुए देखे गए थे। स्विट्जरलैंड में आम चुनावों में ग्रीन पार्टी को ऐतिहासिक बढ़त प्राप्त हुई है। इसके साथ ही दिसंबर में होने वाले सरकार गठन में ग्रीन पार्टी अहम किरदार अदा करेगी। उसे साल 2015 में हुए चुनाव के मुकाबले 6% अधिक मत प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही दक्षिणपंथी रुझान वाली स्विस पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुंचा है, लेकिन फिर भी वह सबसे अहम दल के तौर पर उभरी है। इस पार्टी ने जलवायु परिवर्तन के प्रति गंभीरता नहीं दिखाई थी। बोलीविया में हुए आम चुनाव के बाद वोटों की गिनती के बाद आए शुरुआती परिणामों में राष्ट्रपति इवो मोराल्स की चौथी बार राष्ट्रपति बनने का सपना पूरा नहीं हो सका है। अब मोराल्स को दिसंबर में रन ऑफ वोट का सामना करना होगा। मोराल्स को सबसे अधिक वोट तो मिले लेकिन वो बहुमत प्राप्त नहीं कर सके। मोराल्स बोलीविया के पहले स्वदेशी नेता हैं जो 14 साल पहले सत्ता में आए थे। उन्हें बोलीविया से गरीबी कम करने का श्रेय दिया जाता है, लेकिन साथ ही उन पर पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक नेता ना होने के आरोप भी लगाए जाते हैं। तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन मगुफुली का स्वास्थ्य ठीक ना रहने की खबरों के बीच उन्होंने टीवी के जरिए देश की जनता को संबोधित किया है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार स्वीकार करें मोहम्मद शाहिद का। ये बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ हमारी वेबसाइट bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी लाइव सुन रहे हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र में नई विधानसभा के लिए मतदान अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। इसके अलावा आज ही 18 राज्यों की 51 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने जा रहा है। महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों ही राज्यों में फिलहाल बीजेपी की सरकार है। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर आज मतदान होगा। मतदान के लिए किस तरह की तैयारियां की गई हैं, इस जानकारी के लिए सीधे चलते हैं बीबीसी मराठी सेवा की संवाददाता जानवी मूले के पास, जो इस समय मुंबई में मौजूद हैं। जानवी, हमें बताएं कि मतदान के लिए कैसी सरगर्मियां आप देख पा रही हैं?
जी, शायद मुंबई में माहौल चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार दिखाई दे रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी है, लेकिन अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें तो ये इस इलाके में मुंबई और खास करके पुणे में भारी तौर पर हमें बारिश होती हुई दिखाई दी है और आशंका जताई जा रही है कि इसका परिणाम कुछ हद तक जो वोटिंग का परसेंटेज है उसके ऊपर हो सकता है। अगर हम चुनाव की बात करें तो 6 बड़ी पार्टियां हैं महाराष्ट्र में, जिनमें से भाजपा और शिवसेना एक साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, साथ ही साथ उनके खिलाफ कांग्रेस और राष्ट्रवादी का अलायंस है और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो राज ठाकरे की पार्टी है और वंचित बहुजन आघाड़ी जो एक अलायंस है, दलित पार्टियां भी उसमें कुछ है, दलित लीडर्स भी उसमें कुछ है। ये 4 ग्रुप हमें दिखाई दे रहे हैं चुनाव के जो आंगन है उसमें। साथ ही साथ लगभग 8 करोड़ से ज्यादा महाराष्ट्र की जनसंख्या है, 8,97,00,000, इतने सारे वोटर्स है जो 288 सीटों के लिए आज मतदान करने जा रहे हैं।
जी जानवी, आपने बारिश की बात की, क्या अभी क्या बारिश जैसे माहौल अभी भी है, बारिश हो रही है?
जी, ये थोड़ा अक्टूबर के महीने में मुंबई में बारिश नहीं होती आमतौर पर, लेकिन इस बार 2 दिन से बारिश हो रही है। उतनी मूसलाधार बारिश तो नहीं है जैसे जुलाई के महीने में हमें दिखाई देती है, लेकिन इस बूंदाबांदी का असर कुछ तौर पर मुंबई में पड़ सकता है चुनाव पर, लेकिन उससे भी ज्यादा पुणे के कुछ इलाकों में भारी बारिश हुई है कल के दिन में और शायद उसका कुछ हद तक परिणाम हो सकता है, लेकिन फिलहाल कुछ नहीं बताया जा सकता। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज भी बारिश हो सकती है।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानवी इतनी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। हरियाणा विधानसभा की आज कुल 90 सीटों के लिए मतदान होगा, जिनमें से 17 सीटें अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। हरियाणा में कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी और INLD जैसे दल मैदान में हैं। हमारे सहयोगी सतसिंह रोहतक से हमारे साथ टेलीफोन पर जुड़ चुके हैं, आइए उनसे जानते हैं मतदान की तैयारियों का हाल। जी सतसिंह, बताएं कि किस तरीके का आप देख पा रहे हैं माहौल हरियाणा में?
जी, जैसे अगर बात करें हरियाणा की तो जैसा अभी आपने कहा कि 90 विधानसभा सीटों पर अभी आज इलेक्शन है, आज मतदान है हरियाणा में, और जिसमें 1.83 करोड़ वोटर्स जो हैं अपनी वोट डालेंगे और काफी चुनाव आयोग ने पूरी तैयारियां की हैं। अगर हम बात करें पिछले कुछ दिनों की तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर आए हैं और उन्होंने काफी सारी चुनाव रैली एड्रेस की है, और अगर बात करें और भी जो मिनिस्टर है अमित शाह और बाकी यूनियन मिनिस्टर्स भी यहां आए हैं और उन्होंने बीजेपी पार्टी के अंदर जो हरियाणा में नेशनल इश्यूज को उठाने का एक काम किया, जैसे धारा 370 की बात करें, 35A की बात करें, और जहां जो विपक्ष पार्टी है वो इस तरह का इल्जाम लगा रही है कि जो विधानसभा इलेक्शन होते हैं वो लोकल इश्यूज पर फोकस होने चाहिए, उसमें डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, उसमें जो है कितना इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ पे फोकस किया जाएगा, उस तरह की बातें होनी चाहिए। अगर बात करें पॉलिटिकल पार्टीज की तो भारतीय जनता पार्टी जो 2014 में पहली बार हरियाणा में जिन्होंने सरकार बनाई 47 सीट लेकर के, उनके अलावा कांग्रेस है जो 2005 से लेकर 2014 तक हरियाणा में सरकार 10 साल तक रही, इंडियन नेशनल लोकदल है और एक इंडियन नेशनल लोकदल से टूट करके जननायक जनता पार्टी भी इस बार इलेक्शन में है।
सतसिंह जी, अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज मैदान में हैं, उसके अलावा जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं सुरजेवाला वो भी हैं, तो और कौन कौन है इस चुनाव मैदान में?
जी, अगर हम बात करें VIP कैंडिडेट की, हाई प्रोफाइल सीट की, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बीजेपी के, वो करनाल से चुनाव लड़ रही हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे आपने कहा गढ़ी सांपला किलोई से चुनाव लड़ रही हैं, उसके अलावा रणदीप सुरजेवाला कैथल से चुनाव लड़ रहे हैं, किरण चौधरी जो कांग्रेस की सीएलपी लीडर रही थी वो तोसाम से चुनाव लड़ रही हैं, जो भजनलाल के बेटे हैं जो मुख्यमंत्री रहे भजनलाल उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई आदमपुर से हैं, जननायक जनता पार्टी जो एक नई पार्टी हरियाणा में पिछले 11 महीने में बुढ़िया दुष्यंत चौटाला जिनके लीडर हैं वो उचाना से चुनाव लड़ रहे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल जिन्होंने 2014 में 19 सीटें ली थी बीजेपी के बाद सेकंड हाईएस्ट सीटें, अभय चौटाला एलाहाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं, और इस बार हरियाणा में कुछ वीआईपी स्पोर्ट्स पर्सन सेलिब्रिटीज भी चुनाव लड़ रही हैं जैसे बबीता फोगाट दादरी से, योगेश्वर दत्त बड़ौदा से और संदीप सिंह पेहवा से।
बहुत बहुत शुक्रिया सत्सिंह जी इतनी सारी जानकारियों के लिए। आज दो लोकसभा सीटों पर भी उपचुनाव होना है, इनमें एक महाराष्ट्र की सतारा और बिहार की समस्तीपुर सीट है। इन सभी सीटों पर हो रहे मतदान के नतीजे 24 अक्टूबर को आएंगे। रुख करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कल भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर भारी गोलीबारी हुई। इस घटना में भारत के 2 सैनिकों और एक आम नागरिक की मौत हुई है। दोनों देशों ने एक दूसरे पर युद्ध विराम के उल्लंघन का आरोप लगाया है। भारतीय थलसेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि भारत की फायरिंग में 6 से 10 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
जिस तरह की खबर हमें मिली है उसमें पाकिस्तानी सेना को और उनके वहाँ जो आतंकवादी इन कैंप में मौजूद थे उनको भारी नुकसान हुआ है। इस वक्त तक जो खबर है हमारे पास वो 6 से 10 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और तकरीबन इतने ही आतंकवादी भी मारे जा चुके हैं। आतंकवादियों के मारे जाने की खबर हमें कुछ और भी मिल रही है जिसके बारे में हम जानकारी आपको बाद में देंगे, लेकिन हम ये यकीन के साथ कह सकते हैं कि कम से कम 3 आतंकवादी कैंप तो तबाह किए गए हैं और चौथे कैंप में भी कुछ नुकसान पहुंचा है, और अगर इस तरह की कार्रवाई पाकिस्तान करता रहा तो हम जवाबी कार्रवाई करने में आगे भी नहीं हिचकिचाएंगे।
ये थे भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत। वहीं पाकिस्तानी सेना का कहना है कि उसकी फायरिंग में 9 भारतीय सैनिक मारे गए हैं। 5 अगस्त को भारत की ओर से जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा वापस लिए जाने के बाद ये पहला मौका है जब दोनों देशों के बीच सीमा पर इतनी हिंसा हुई है। लगातार बढ़ रहे इस तनाव का सीमा के पास रहने वाले लोगों पर किस तरह से असर पड़ रहा है, सुनिए जम्मू से मोहित कंधारी की रिपोर्ट।
ये बच्चा नीचे रखा हुआ था इसने किचन में, तो खुद दरवाजे में खड़ी थी, तो किचन की जो दीवारें थी वो आधी आधी थी, कम से कम ऊपर 1.5 फुट का गैप था, तो वहां से सीधा गोला जो है इसके सर में डायरेक्ट हिट हो गया, तो वहां उसने मौके पे डेथ हो गई।
ये थी पुंछ जिले के शाहपुर गांव के सरपंच शब्बीर राठौर की आवाज। वो बीबीसी हिंदी को बता रहे थे कैसे 15 अक्टूबर के दिन 20 दिन के बच्चे की मां शमीमा अख्तर पाकिस्तानी सेना द्वारा नियंत्रण रेखा के पार से की गई फायरिंग में मारी गई। पुंछ जिले में ऐसे बहुत से गांव हैं जहां के बाशिंदे पिछले 2 महीनों से डर के साए में जी रहे हैं। अचानक नियंत्रण रेखा पर गोलाबारी शुरू हो जाती है और खेतों में काम करने वाले मजदूरों को अपनी जान बचाने के लिए किसी भी सुरक्षित स्थान पर शरण लेनी पड़ती है। नियंत्रण रेखा से सटे गांव में कभी कभी छोटे बच्चे भी गोलाबारी का शिकार हो जाते हैं और घंटों अपनी क्लास में दुबक कर बैठे रहते हैं। अभी भी ऐसे बहुत से गांव हैं जहां बंकर नहीं होने की वजह से जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है और कच्चे मकानों में छुपकर रात गुजारनी पड़ती है। शब्बीर राठौर ने बीबीसी हिंदी से कहा अभी भी उनके इलाके में कोई बंकर नहीं बना है।
हमारा जो ये 2-3 पंचायत है शाहपुर गोत्रिया इस्लामाबाद इस एरिया में जो है बंकर की बहुत कमी है। ये 2-3 पंचायतों में अभी तक जो कोई बंकर नहीं है, और बिलखसूस जो हमारे हाई स्कूल या प्राइमरी स्कूल है ना यहाँ पे, तो स्कूलों के पास कोई बंकर जो है वो नहीं है, यहाँ बहुत ज्यादा दिक्कत है।
जम्मू में रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद ने बीबीसी हिंदी से कहा कि 5 अगस्त के बाद से नियंत्रण रेखा के आसपास पाकिस्तान की तरफ से भारी मात्रा में सीज फायर वायलेशन जारी है जिसमें भारतीय सेना के साथ साथ आम नागरिकों को भी नुकसान झेलना पड़ा है।
5 अगस्त के बाद से नियंत्रण रेखा के आसपास पाकिस्तान की तरफ से भारी मात्रा में सीज फायर वायलेशन जारी है और काफी इंटेंसिव मात्रा में सीज फायर वायलेशन हो रहा है, जिसमें वो ना सिर्फ आर्मी की पोस्ट बल्कि सिविलियन एरियाज को भी टारगेट कर रहे हैं, और इस सीज फायर वायलेशन में काफी मात्रा में नुकसान भी पहुंचा है, सिविलियन एरियाज में बहुत सारा नुकसान पहुंचा है और भारतीय सेना की भी कुछ एक कैजुअलिटीज हुई हैं।
रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि भारतीय सेना के जवान नियंत्रण रेखा पे पूरी तरह से चौकसी बरत रहे हैं और घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मोहित कंधारी, BBC जम्मू।
भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर गोलीबारी कोई पहली बार नहीं हुई है। हालांकि दोनों देशों में बेरोजगारी और गरीबी जैसी समस्याएं भी हैं, लेकिन पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार वसतुल्ला खां ये क्यों कह रहे हैं कि दोनों देशों में सब चंगा है? सुनिए वसतुल्ला खां की डायरी।
पिछले वर्ष चुनाव से पहले तहरीक इंसाफ के घोषणा पत्र में वादा किया गया कि नए पाकिस्तान में गरीबों के लिए 50 लाख सस्ते घरों का, बेघरों के लिए शेल्टर होम्स का, बेरोजगारों के लिए 1 करोड़ नौकरियों का इंतजाम होगा। यूं पाकिस्तान अगले 5 वर्ष में वेलफेयर स्टेट बन जाएगा। पिछले 1.25 साल में लाहौर में 3 और इस्लामाबाद में 1 सरकारी पनाहगाह बन चुकी है। इनमें 700 बेघर रात बिता सकते हैं। इस रफ्तार से बाकी 2 करोड़ बेघरों को अगले 300 वर्ष में किसी न किसी पनाहगाह में जगह मिल ही जाएगी। रही बात 50 लाख सस्ते घरों की, तो प्रधानमंत्री पिछले 5 महीने में 5 नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीमों का फीता काट चुके हैं। इसमें 1 घर 7.5 लाख रुपये का बनेगा। अगर किसी के पास 7.5 लाख रुपये भी नहीं तो ऐसा गरीब गरीबी के नाम पर धब्बा है। अब आइए 1 करोड़ नौकरियों के वादे पर। पिछले हफ्ते ही साइंस और टेक्नोलॉजी के मंत्री फवाद चौधरी ने खुल के कह दिया कि हमने नौकरियां देने का कोई वादा नहीं किया था, हमने तो बस ये कहा था कि सरकार प्राइवेट सेक्टर के लिए ऐसा माहौल पैदा करेगी कि 1 करोड़ नौकरियां पैदा हो जाएं। पाकिस्तान में इस वक्त लगभग 40% आबादी को ज़रूरत से कम खुराक या भुखमरी का सामना है। निचले वर्गों की 60% आमदनी सिर्फ खान पान पे ही लग जाती है, मगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि घबराना नहीं है। पिछले हफ्ते ही उन्होंने इस्लामाबाद में एक NGO सीलानी ट्रस्ट के साथ मिलकर भूखों के लिए मुफ्त खाने का भंडार खोला, जिसमें रोज़ाना 600 लोग भोजन कर सकते हैं। सरकार ऐसे कम से कम 600 भंडार खोलेगी, क्योंकि रोज़गार नहीं है। इस हिसाब से पाकिस्तान के 22 करोड़ में से भूख की तलवार तले जीवन बिताने वाली 8 करोड़ आबादी को कितने वर्ष में भरपेट खाने की सुविधा मिल जाएगी, अल्लाह जाने। ये अलग बात कि इस वक्त गोदाम गल्ले और चीनी से भरे पड़े हैं और उनमें नई पैदावार रखने की जगह नहीं। 6 रोज़ पहले जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स सामने आई, उसमें शामिल 117 देशों में पाकिस्तान का नंबर अब 94 है। मगर हमारे लिए दुख ये नहीं कि बांग्लादेश 88वें नंबर पे है, बल्कि सुख ये है कि भारत हमसे भी नीचे यानी 102 नंबर पे है। यही भारत अच्छे दिन आने से पहले 2010 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 95वें नंबर पे था। आज फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कह रही है कि हमारे गोदामों में अब और अनाज रखने की जगह नहीं बची, मगर यूपी के बहुत से स्कूलों में बच्चे दोपहर के खाने में नमक रोटी या हल्दी का पानी चावल पी रहे हैं। पर आप यही समझिए कि ऐसी खबरें देशद्रोही पत्रकार फैलाते रहते हैं। मुझे न भारत और न पाकिस्तान की सरकारों से कोई दिक्कत है, मैं तो बस उस आदमी की गुद्दी पकड़ना चाहता हूं जिसने इमरान खान को ये नारा सिखाया कि घबराना नहीं है, और जिसने हाउडी मोदी वाली तकरीर में लिखा, मित्रों सब अच्छा है, बदाज मजामा छे, शॉप खूब भालो, एवरीथिंग इज फाइन, तालियां।
वसतुल्ला खां की डायरी आपको कैसी लगी हमें जरूर लिखें। रुख करते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय खबर का। ब्रेक्जिट यानी ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर निकलने को लेकर संशय बना हुआ है। ब्रिटानी सरकार ने यूरोपीय संघ को चिट्ठी भेजकर ब्रेक्जिट के लिए और मोहलत मांगी है, मगर एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा है कि ब्रिटेन हर हाल में तय तारीख यानी 31 अक्टूबर को यूरोपीय संघ से बाहर निकलेगा। हमारी सहयोगी मानसी दास ने बात की लंदन के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज में प्रोफेसर सुबीर सिन्हा से और पूछा कि क्या ब्रेक्जिट 31 अक्टूबर को हो पाएगा या नहीं।
मामला शुरू से ही बहुत ही पेचीदा रहा है, जब से मतलब रेफरेंडम 2016 में जब से उसके रिजल्ट आए हैं, 52% ने कहा जाना चाहते हैं बाहर, 48% ने कहा हम रहना चाहते हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर, और इसके बाद से मतलब कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि जान बाहर निकलने का क्या मतलब है और अंदर रहने का क्या मतलब है। अब इसमें चक्कर यह है कि अगर आपने एक रेफरेंडम लोगों को ऑफर किया और उसमें 52% लोगों ने कहा है कि हम यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना चाहते हैं
और उस वक्त की सरकार और 2017 में जो यहाँ पे इलेक्शन हुए थे उसमें लेबर की मैनिफेस्टो में और बाकी पार्टियों के मैनिफेस्टो में भी जब आपने ये लिखा हुआ है कि हम जनता ने जो आदेश दिया है उसका पालन करेंगे, तो फिर तो आपने अपने हाथ पैर बांध लिए एक तरह से रेफरेंडम के रिजल्ट के साथ। अब उससे आपको निकलना, वहां से आप वापस निकल भी नहीं सकते, क्योंकि फिर एक बात तो सही है कि भाई ये लोकतांत्रिक मतलब लोकतंत्र के खिलाफ होगा कि आपने लोगों को एक ऑफर भी डाला, उन्होंने वोट भी किया, फिर आप कहते हैं आपकी बात हम नहीं मान सकते। और दूसरी तरफ ये है कि जैसे जैसे ये प्रक्रिया जो है 2016 से आगे बढ़ी है, ये बिल्कुल साफ दिखाई पड़ते चले जा रहा है कि इससे बहुत ज्यादा हानिकारक इसके परिणाम होने वाले हैं यूनाइटेड किंगडम के लिए। और ये परिणाम जो है वो ना सिर्फ इकोनॉमिक या आर्थिक परिणाम इसके नेगेटिव होंगे, मगर इनकी जो मतलब सारी व्यवस्था है, खास करके नॉर्दर्न आयरलैंड का जो मामला है वो कि कोई भी अभी तक जो डील सामने आई है उसमें वो सॉल्व होता दिख नहीं रहा है।
अगर हम ये मान के चलें कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से वाकई निकल जाएगा, ये वाकई हाँ। में ब्रिटेन के लिए कितना हानिकारक है?
जो आंकड़े आते हैं इसमें से अभी तक हुआ था कि ब्रिटेन की 1% जीडीपी जो है वो ऑलरेडी वाइप आउट हो चुकी है रेफरेंडम होने से आज तक। अब अगर ब्रिटेन निकल जाता है यूरोपियन यूनियन से, तो ये जितनी सारी यहाँ पे चीजें बनती हैं उनको तो कहीं पे और बनवाना पड़ेगा, तो काफी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर 1-1.5 लाख इस तरह के फिगर चल रहे हैं कि डायरेक्ट इनका राइट अवे जो है उतना इस पे असर पड़ेगा। खाने के दाम, आप यहाँ पे किसी भी दुकान में चले जाइए जो है आपको ज्यादातर या बहुत सारी चीजें, खीरा या फिर एप्पल या बहुत सारी चीजें, ये आप लाते हैं यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज से, खाने का दाम आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। फार्मर्स जैसे ब्रिटेन के अंदर खास करके जो कि मटन के मतलब लैम के जो फार्मर्स हैं उनकी बहुत ज्यादा जो है सेल्स वो बिक्री होती है यूरोपियन यूनियन के अंदर, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। तो मतलब सेक्टर बाय सेक्टर खत्म होने का बात चल रहा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर खत्म, फार्मिंग सेक्टर खत्म, और इन लोगों ने फार्मर्स ने पहले बहुत ज्यादा वोट किया था लीव के लिए। आपको सिर्फ उस वक्त ये पूछा गया था कि आप रहना चाहते हैं या नहीं, तो उस वक्त ये सारा जो डिबेट था तो इमोशनल डिबेट था, रैशनल डिबेट नहीं था। अब डेटा सामने आ चुकी है कि कितना ज्यादा आपके पास हार्म होगा हर एक सेक्टर को लेकर के, और इसलिए मतलब
ये थे प्रोफेसर सुबीर सिन्हा। अब जान लेते हैं दिल्ली से छपने वाले अखबारों में आज क्या कुछ खास छपा है। अखबारों के साथ स्टूडियो में नवीन नेगी हैं। जी नवीन बताएं।
जी शाहिद, आज दिल्ली से प्रकाशित लगभग सभी समाचार पत्रों में भारतीय थल सेना अध्यक्ष बिपिन रावत का वो बयान प्रकाशित है जिसमें उन्होंने बताया कि भारतीय सेना की कार्रवाई में 6-10 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और लगभग इतने ही चरमपंथी भी मारे गए थे
जी।
और अनुच्छेद 370 जब कश्मीर से हटाया गया तो उसके बाद से जो है पहली बार इतनी बड़ी कोई कार्रवाई हुई है। इसके अलावा हरियाणा और महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आज जो वोटिंग होगी उससे जुड़ी हुई खबरें भी हैं, और इससे जुड़ी बड़ी एक दिलचस्प खबर है अंग्रेजी अखबार द हिंदू जिसमें बताया गया है कि हरियाणा से जो है बीजेपी के एक उम्मीदवार हैं और अभी मौजूदा विधायक भी हैं बख्शी सिंह विर्क, उनका एक वीडियो वायरल हो गया है जिसमें वो जनता से कह रहे हैं कि ईवीएम में कोई भी बटन दबाइए वोट जो है वो बीजेपी को जाएगा यानी कमल को ही जाएगा। तो ये जब वीडियो वायरल हो गया तो इसके बाद अब चुनाव आयोग ने कई विपक्षी दलों की शिकायत का संज्ञान लेते हुए पूर्व उपचुनाव आयुक्त जुत्सी को जो है करनाल जिले की असंध सीट के लिए जो है विशेष पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त कर दिया है। पाकिस्तान ने पहली बार भारत के साथ जो है अपनी पोस्टल सेवा रोक दी है। इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को प्रकाशित किया है और यह एक बार फिर से जो है जम्मू कश्मीर में जो भारत सरकार का फैसला है उसके चलते पाकिस्तान ने यह कदम उठाया है। और पाकिस्तान ने जो है करीब 1.5 महीने से भारत से कोई डाक स्वीकार नहीं किया, ऐसा ही अखबार लिखता है।
यानी ट्रेन के बाद चिट्ठियां भी नहीं आएंगी।
जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ जो है अयोध्या पे जो फैसला आने वाला है अगले महीने तक, उस पर मुस्लिम पक्ष ने कल कहा कि कोर्ट जो भी फैसला दे उसका किसी पक्ष की तरफ ये फैसला आए लेकिन आने वाली पीढ़ियों पे इसका बड़ा असर पड़ेगा, ऐसा कहा है मुस्लिम पक्ष ने
जी।
और चलते चलते एक और खबर कि दिल्ली विश्वविद्यालय के जो सेंट स्टीफेंस कॉलेज है उसके एक लेक्चरर से जुड़ी हुई खबर है कि उनका शव मिला है रेलवे लाइन पर, और उनकी माँ की पहले उन्होंने हत्या की और उसके बाद उनका खुद का शव मिला। उनकी उम्र 25 साल थी और माँ की उम्र 55 साल थी। ये खबर नवभारत टाइम्स में प्रकाशित हुई है।
अखबारों की समीक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नवीन नेगी। श्रोताओं अब समय है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम खेल और खिलाड़ी का।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त।
भारत ने रांची में खेले जा रहे तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच के दूसरे दिन ही अपनी मजबूत पकड़ का एहसास दक्षिण अफ्रीका को करा दिया। भारत ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 497 रन के स्कोर पर समाप्त घोषित की और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के 2 विकेट केवल 9 रन पर गिर गए। उसके दोनों सलामी बल्लेबाज पेविलियन लौट चुके हैं। डीन एल्गर बिना कोई रन बनाए मोहम्मद शमी की गेंद पर विकेट कीपर रिद्धिमान साहा के हाथों लपके गए तो क्विंटन डिकॉक केवल 4 रन बनाकर साह के हाथों कैच हुए। इससे पहले कल भारत ने अपनी पहली पारी 3 विकेट पर 224 रन से आगे शुरू की। पहले दिन 83 रन पर नाबाद अजिंक्य रहाणे 115 और 117 रन पर नाबाद रोहित शर्मा 212 रन बनाकर आउट हुए। रोहित शर्मा बोले,
ऐसे नहीं कि ओपन करने के बाद ही अच्छा करना है। हाँ, मैं ओपन करना पसंद करता हूँ, लिमिटेड ओवर्स में कर रहा हूँ, तो टेस्ट मैच में ऑब्वियसली एक डिफरेंट चैलेंज होता है। अभी तक मैंने 3 टेस्ट मैच ही खेला है एज अ ओपनर, सो आई It is long way to go now.
इसके अलावा रविंद्र जडेजा ने भी खुलकर हाथ दिखाते हुए 51 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका के जॉर्ज लिंडे ने 133 रन देकर 4 और कैगिसो रबाडा ने 85 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। कल एक तरफ जहां रोहित शर्मा ने अपनी 212 रनों की पारी में 6 छक्के लगाए, वहीं उमेश यादव ने अपनी 31 रनों की पारी में ही 5 छक्के लगाकर दर्शकों की खूब वाहवाही लूटी। और अब समीक्षा। बीसीसीआई का अध्यक्ष बनना सौरभ गांगुली के लिए कितनी बड़ी चुनौती?
देखिए, बहुत छींटे उड़े हैं बीसीसीआई के नाम पर, बल्कि मैं कहूंगा कि दाग लग गया है पिछले 5-6 साल में और ये दाग इतनी आसानी से जाएगा नहीं। लेकिन अगर सौरभ गांगुली का बंदा प्रेसिडेंट बनता है तो फिर लोगों की उम्मीदें जाग जाती है और ये उम्मीद पूरी करने के लिए पूरी जिम्मेदारी बनती है अब सौरभ गांगुली पे किस तरह से आपको कंडक्ट करते हैं।
ये कहना है क्रिकेट समीक्षक अयाज मेमन का। और अगर सब कुछ सही रहा तो 23 तारीख को भारत के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बन जाएंगे। क्रिकेट के मैदान में वो बेहद कामयाब कप्तान साबित हुए और अब वो उस बीसीसीआई की कमान संभालने जा रहे हैं जो आईपीएल से जुड़े कथित सट्टेबाजी के आरोपों के कारण सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भंग हो गई थी। मसले सौरभ गांगुली के सामने भी कम नहीं है। आईसीसी से मिलने वाले पैसे में अधिक दारी, बीसीसीआई के अपने ही टूर्नामेंट आईपीएल को साफ सुथरा बनाना और खासकर अपने आप को सियासत से जुड़े लोगों से बचाना जो बीसीसीआई या राज्य क्रिकेट संघ से जुड़े हैं। अयाज मेमन कहते हैं,
पुराने खिलाड़ी थे, शायद उनके चेहरे सामने ना हो लेकिन पर्दे के पीछे से डोरी जो है वही खींच रहे हैं, क्योंकि कहीं किसी की लड़की बन गई है प्रेसिडेंट, कहीं किसी का भाई, कहीं किसी का भांजा, और सियासती बैकग्राउंड है इस इंडियन क्रिकेट में। और जिस तरह से अपॉइंटमेंट भी हुआ है सौरभ गांगुली का, कि अमित शाह जो होम मिनिस्टर है इंडिया के, सब ऑफिस बेयरर्स जो पुराने वाले थे और जो नए वाले हैं, गांगुली खुद उनसे मिले हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स इतना प्ले करता है रोल स्पोर्ट्स में इंडिया में और खास करके क्रिकेट में, तो ये कहना इसमें कोई एक एंगल नहीं है ये भी मुश्किल है। तो ये सब चुनौतियां हैं सौरभ गांगुली के सामने, लेकिन अगर हम क्रिकेट पर तवज्जो रखें तो किस अर्जेंसी से ये अपने डिसीजन लेते हैं ये हमें पता चलेगा आने वाले 10 महीनों में।
33 महीने प्रशासकों की समिति के हाथों रही बीसीसीआई अपनी नई टीम के साथ वापस रंगत में लौट रही है। सौरभ गांगुली ने ऐलान किया है कि वो घरेलू क्रिकेट में सबसे निचले स्तर पर खेलने वाले क्रिकेटरों की भलाई के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं।
My biggest priority and as I've been harping over 3 years is first class cricketers. We will change their lives because that's most important. They are the base of Indian cricket. We only look at the top. We'll have to look at the bottom and we'll change it.
सौरभ गांगुली को बीसीसीआई का अध्यक्ष बनते देख एक और क्रिकेट समीक्षक विजय लोकपल्ली कहते हैं,
भारतीय टीम का कप्तान विराट कोहली है और बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली है। फील्ड पे एक बड़ा प्लेयर, उनको बैक करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में एक बहुत बड़ा प्लेयर, तो मुझे लगता है ये इंडियन क्रिकेट के लिए ओवरऑल बेस्ट खबर है।
सौरभ गांगुली ने अभी तक तो हर चुनौती का सामना जमकर किया है, देखना है उनकी नई पारी कितना कामयाब साबित होती है। उधर डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल वर्ग का फाइनल चीन ताइपे की 4th वरीयता हासिल ताइजू यिंग ने अपने नाम किया। खिताबी मुकाबले में उन्होंने 3री वरीयता हासिल जापान की नोजोमी ओकुहारा को 21-17, 21-14 से हराया। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
अब से कुछ ही देर में भारत में बजेंगे सुबह के साथ। नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाला तिलक राज भाटिया ने। आपसे अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। तब तक ताज़ा खबरों के लिए आए हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com पर। मोहम्मद शाहिद को सभी साथियों के साथ दें अनुमति। नमस्कार।